أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الرسول الصحلين محبوب رب المشرقين المغربين جد الحسن والحسين أبو الخاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا حسین صلوات پڑھو اللہ محمد عزاداران حسین رضوی کالج بامبے کی یہ سکسٹھ مجلس ہے چھٹی مجلس ہے لبیک یا حسین کی ٹاپک مسلسل ماشاءاللہ پانچ دن سے اتنی کثیر تعداد میں آپ تشریف لا کر مظلوم امام کو ایک پرومس کر رہے ہیں ایک وعدہ کر رہے کہ مولا میں حاضر ہوں. ہماری دعا یہی ہے کہ مولا ہماری سروسز کو قبول کریں انشاءاللہ. یہ ہماری لائف کی ہماری زندگی کی سب سے اہم چیز ہے دوستو, جو میں مسلسل آپ سے اس ٹاپک پہ بات کر رہا کہ یہ ایزی لینے کی چیز نہیں ہے, کوئی چیز بھولنے کی نہیں ہے کہ اگر نہیں ہوا تو کیا فرق پڑتا. میں نے پہلے دن سے یہ بات کہی کہ ایک چیز یاد رکھیں, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, سب سے اہم چیز ہے. 24 گھنٹے ایک فکر ہونی چاہیے, ایک سوچ ہونی چاہیے کہ میرا مولا ہم کو ایکسیپٹ کر رہا یا نہیں کر رہا. ہماری زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کو امام ایکسیپٹ کر لے. غفلت اگنورنس سے باہر نکلنا ہے. محرم کا پیغام ہی یہ ہے. میں نے کل بھی کہا تھا, آج پھر وہ جملہ ریپیٹ کر رہا ہے کہ ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ محرم جب آتا ہے نا تو محرم ہمارا 12 دن کا نہیں ہے یا کوئی فارمیلٹی کے نہیں ہے کہ ایک آئے محرم آ گیا جانا ہے رضوی کالج, جانا ہے ان مجلسوں میں 12 دن اور مجلس کرنا ہے واپس آنا ہے. جب آؤ جب اپنے آپ میں تھوڑی تبدیلی کو پیدا کرو, جب آؤ جب ہر مجلس میں کوئی مجلس میں آپ جائیں ہر وقت ایک فکر ایک چینج ہونا چاہیے. جیسا آئے تھے ویسے اس مجلس سے واپس نہیں جانا. دیکھیں مجلس حسین میں اور دوسری چیزوں میں بڑا فرق ہے. آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں, لائف آپ کی جیسے نارمل چل رہی, ویسے نہیں ہے مجلس. مجلس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آدمی آئے کچھ اور جائے کچھ. آئے تو خالی ہاتھ آئے, ایمٹی ہینڈس آئے, جائے تو جھولی بھر کے جائے. مجلس حسین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کو کوئی چیز نہ ملے. یہی ایک جگہ ایسی ہے جہاں آپ کنفرم یہ کہہ سکتے کہ ہم کو کچھ ہم مل سکتا لے سکتے. اگر آپ کو دنیا میں پتا ہے کہ آپ جیسا بزنس میں کوئی انسان بزنس مین لوگ کیا کرتے ہیں, جب جاتے ہیں کوئی پروجیکٹ کو کوئی بزنس کو لینے, اگر ان کو کنفرم رہتا ہے کہ یہ بزنس کو اگر میں ٹرائی کرا میں کوشش کرا تو مجھے یہ بزنس مل جائے گا, تو انسان کتنی اور کوشش کرتا, کتنا اور ٹرائی کرتا کہ مسلسل یہ کوشش کرتا کہ یہ چیز مجھے مل جائے. دنیاوی چیز کے لیے ہم اتنا ٹرائی کر رہے ہیں, دنیاوی چیز کے لیے اتنے ایفرٹس لگا رہے ہیں کہ مجھے یہ کام مل جائے. ہر انسان جتنے بزنس مین ہیں ان کے ذہن میں نہیں ہے کوئی بزنس آیا ہے تو اس کو لینا ہے. انسان پھر فوراً کیلکولیشن کرتا ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ مل گیا تو مجھے اتنا 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 پروفٹ ملے گا. وہ کوشش کرے گا, پورے اپنے ایفرٹس لگائے گا. آج کے زمانے میں کوئی بزنس بغیر ایفرٹس کے نہیں ملتا. آج کے زمانے میں اگر آپ کو جاب لینا ہے تو آپ کو اپنے ایفرٹس لگانا پڑتا ہے. خالی انٹرویو دے کے آگے گھر میں نہیں بیٹھتے, بلکہ آپ کوشش کرتے کہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی سے بات کر کے اس جاب کو لو. اگر اچھی جاب ہے تو انسان پوری ٹرائی کرتا ہے, پورے ایفرٹس لگاتا ہے. کوئی غفلت میں اگنورنس میں انٹرویو دے دے یا آپ بزنس کے لیے گئے آپ جا کے ملے کیجوئل مل کے آئے اور آ کے کوئی بزنس نہیں ملتا. آج کل کیجوئل چیز پہ اگر آپ کیجوئل اپنے بزنس کو کرنا چاہ رہے تو ایک حد تک ان کے بعد بزنس آپ کا بند ہو جائے گا. अगर आप कैजुअल हो जाएंगे, आपको 24 घंटे एफर्ट्स लगाना पड़ता। बंदा बैठ के सोचता है मैनेजर्स और सीईओ क्या है, जो इतनी उनको सैलरी मिल रही है, क्यों मिलती है इनको इतनी सीईओ को सैलरी? नीचे का लेबर तो ज्यादा काम करता है, लेकिन सीईओ जो है वो कितना एफर्ट्स लगाते हैं, कितना प्लान करते हैं, मैनेजर्स कितना प्लान करते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, इस बिजनेस को लेना। दोस्तों, दुनिया की चीज के लिए इंसान इतना कोशिश करे, इतना ट्राई करे कि जिसकी गारंटी नहीं है कि वो मिलेगा तो पूरा बिजनेस मुझे मिलेगा या मिलने के बाद मैं उससे फायदा उठाऊंगा या नहीं, लाइफ की कोई गारंटी नहीं। पूरा बिजनेस आ गया, पूरा पैसा आ गया, लेकिन पता चला आप ही चले गए, कोई फायदा ही नहीं हुआ। मैं उस चीज की बात कर रहा इस मुहर्रम में, लब्बैक या हुसैन कोई मामूली चीज नहीं है। इसमें एफर्ट्स लगाओ ना, इसमें कोशिश करो ना। इसमें क्यों नहीं लगाते एफर्ट्स कि जैसे रिजवी कॉलेज में 9 बजे एंटर हुए, जिस अंदाज से 10 बजे जब जाओ आशुकाने की जियारत करके, मिंबर की जियारत करके, मजलिस में बैठ के दो आंसू निकाल कर थोड़ा सा चेंज करो, थोड़े से एफर्ट्स लगाओ, ये 10 दिन में अगर लड़की लड़का औरत मर एफर्ट्स लगाए ना, तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी, लाइफ खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। हमको दुनिया की चीजों में एफर्ट्स पूरे लगा रहे हैं। कोई इंसान मेरे को आज तक ऐसा नहीं दिखा जो कैजुअल लाइफ गुजारता है। हर इंसान अपने एफर्ट्स लगाता है अपनी लाइफ में, और वो सक्सेसफुल इंसान होता है, वो कामयाब इंसान होता है दुनिया में, जो अपने एफर्ट्स लगाकर अपनी को कामयाबी से लेके जाए। लेकिन हम मजहब में, हुसैन के मामले में, मजलिसों में, मुहर्रम में एक फॉर्मेलिटी के लिए कैजुअल आए और कैजुअल चले गए। प्लीज, अपने आप को चेंज करना है, एक रिवोल्यूशन लाना है, एक इनकलाब बर्पा करना है अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में। हर मुहर्रम में बंदे को चेंज होना है, हर मजलिस में चेंज होना है। हम चार चार पांच पांच मजलिस दिन भर में कर रहे हैं। मुहर्रम में अगर आप कैलकुलेट करें पहले अशरे में, तो कितने माशाल्लाह मजलिस करते हैं, लेकिन वही कैजुअल। बाबा, ये एफर्ट्स निकालने लगो, अगर कैजुअल होते ना तो शियत यहां तक नहीं पहुंचती। कल मैंने कहा था, मैं बताऊंगा, शियत जो आज बॉम्बे में है, हिंदुस्तान में है, ये इतनी आसानी से नहीं आई। अगर कैजुअल होता, हर शिया कैजुअल हो जाता तो आजादारी खत्म हो जाती। अगर कोई लब्बैक या हुसैन उस वक्त नहीं कहता, आपको मालूम है कि करबला के बाद, वाकई करबला के बाद 61 हिजरी 61 में करबला हुआ, 62 में सैदानिया 1.5 साल के बाद वापस आई, 1 साल के कैद के बाद। उसके बाद यजीद ने रेस कर दिया था, इतना जुल्म कर दिया था कि अगर आप हिस्ट्री तारीख देखें, करबला के बाद यजीद ने खाने काबा के खिलाफ को जला दिया था, खाने काबा का जो कवर है उसको जलवा दिया था, लश्कर को भेज के तबाह कर दिया था, खाने काबा के ऊपर आग भिजवा डलवा दी थी। मदीने मुनवरा में रसूल के मजार के पास जो मिंबरे रसूल है, आज हम जाते हैं, बोसा लेते हैं, चूमते हैं कि यह जगह वो है कि जहां रसूल ने खुतबा दिया, पूरे रसूल के सेम सीसी मिंबर से, मशहूर मिंबर मदीने का, मस्जिद नबवी का, उस मिंबर को गुर्ज मार मार के गिरा दिया था, गिर गया था। मस्जिद नबवी में घोड़े बनवा दिए, घोड़े बन गए थे मस्जिद नबवी, इतना जबरदस्त जुल्म था। करबला के बाद कह रहा, तबाह कर दिया मदीने को, तबाह ताराज कर दिया, हजारों की शहादत हो गई, गोली नहीं चली, तलवार तीर से लोगों को मार दिया, 50,000 का लश्कर मदीने में एंटर हो गया था। लोग कैजुअल थे उस जमाने में, इतना जुल्म के बाद शियत आई कैसे? किसी ने लब्बैक या हुसैन कहा, पहली आवाज करबला के बाद किसने बुलंद की? एक 70 और 80 ईयर्स ओल्ड मैन, आप इमेजिन करें यार, इमेजिन करें, 70-80 साल का आदमी बूढ़ा, जिसकी आधी जिंदगी और आखिरी के 4 साल या 5 साल इब्ने ज़ियाद की कैद में गुजरी, और आपको पता है जो इब्ने ज़ियाद का प्रिजन था, जेल थी, वो कैसी थी जेल? इंग्लिश का एक वर्ड है ना, एस, इंग्लिश का जो वर्ड है ना एस, ऐसी चीज थी, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड एस कि जहां रात का तस्वुर नहीं था ना दिन का कोई तस्वुर था, सूरज की एक किरण नहीं आती थी वहां, ना रात मालूम हो रही ना दिन मालूम हो रहा, अंडरग्राउंड 20 मीटर या 18 मीटर नीचे पूरे 5,500 बाज रिवायतों में 15,000 शिया ने हैदर कर्रार कूफे की जेल में पड़े हुए थे 4 साल, वाकई करबला हो गया 60 हिजरी से 64 हिजरी तक। जब यजीद खत्म हुआ, मैं जब 5 दिन से कह रहा था लब्बैक, अब मजलिसें और इंपॉर्टेंट शुरू हो गई कि आपके सामने हिस्ट्री आएगी और आखिरी मजलिस में मैं कंक्लूड करूंगा कि हमको करना क्या है। मैं जो बातें आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन चीजों को छोड़ो, ऐसे ही आई है शियत एस की तरह कैद में 5,500 इमाम के चाहने वाले, उनका क्राइम क्या था, क्या उन्होंने कोई गलत काम किया था? उनका क्राइम यह था कि उनके दिल में अली की मोहब्बत थी, हुसैन की मोहब्बत थी, उन्होंने लब्बैक या हुसैन कहा था। जब जनाब मुस्लिम इब्न अखील आए थे कूफा तो उन्होंने लब्बैक या हुसैन कह के आवाज बुलंद की थी, मुस्लिम का साथ देना चाहते थे, लेकिन इब्न ज़ियाद जब गवर्नर बन के आया तो पूरों को पकड़ के जेल में डाल देता है और 4 ईयर्स तक या 4.5 ईयर्स तक वो लोग जेल में रहे, पूरे सीनियर सिटीजन रसूल के साहबी, तहज्जुद पढ़ने वाले, सलातुल्लाह पढ़ने वाले, ज़ियारात पढ़ने वाले, इबादत करने वाले, डोनेशंस देने वाले, यतीमों का ख्याल रखने वाले, गरीबों के हमदर्द वो लोग थे, गुनाहगार नहीं थे। वो लोगों को अंदर कर दिया, अंदर करके पहली आवाज जब यजीद खत्म हुआ, इब्ने ज़ियाद बसरे से शाम गया, जब जा रहा था यजीद जब खत्म हुआ तो कूफे में एक रिवोल्यूशन आया और जेल्स को तोड़कर उन मुहिब्बाने आले मोहम्मद को निकाला, जिसमें पता है कौन कौन था, मुख्तार इब्ने अबू उबैदा सखफी, में मुख्तारनामा नहीं पढ़ रहा, मुख्तार थे, हानी थे, सुलेमान खजाई थे, ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज जो तहज्जुद पढ़ने वाले, जो इबादतें करने वाले, पहली आवाज जिसने बुलंद की उस पर्सनालिटी का नाम सुलेमान ने खजाई है, वो भी हम जैसे शिया था। उसने बाहर निकल के कहा कि मैंने लब्बैक या हुसैन कहा है, मैंने हुसैन को बुला, हम लोगों ने हुसैन को बुलाया, इसलिए कि जो 10,000 लेटर्स आए थे इमाम हुसैन को, 10,000, 15,000 उन लेटर्स में इन लोगों ने लिखा था, तो इन लोगों ने कहा कि हम जिंदा रह गए और हुसैन शहीद हो गए, हमारी वजह से हुसैन कूफा आ रहे थे, फिर करबला जाना पड़ा और हुसैन शहीद हुए, तो हम जिम्मेदार हैं और हमने लब्बैक कहकर बुलाया था इमाम को और हम जिम्मेदार हैं, अब हम जिंदा नहीं रह सकते। ये फिक्र देखे, वो लोग बोल सकते थे कि मौला हम तो जेल में थे, आप शहीद हो गए, अब हम क्या करें, घर में बैठ के सिर्फ मजलिस कर लिए, गम कर लिए, इमाम को रो लिए और अपने बिजनेस, अपना कारोबार, अपनी फैमिली को देखकर जिंदगी गुजार ली, कोई बुरी बात नहीं थी। जैसे हम आज है ना, हम क्या कर? हम इमाम के लिए कोई सैक्रिफाइस देने तैयार नहीं है, अगर कहें कि भाई पर्दा करो तो हमको पर्दा करने का नहीं है। आज मुझसे कहते हैं कि कॉस्मोपोलिटन सिटी है, कॉस्मोपोलिटन सिटी में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू, वेरी गुड। इमाम हुसैन को नहीं मालूम था कि बॉम्बे कॉस्मोपोलिटन बनने वाला है 2012 में, इमाम हुसैन डजंट नो, इमाम हुसैन को मालूम ही नहीं था, ये मैं कह रहा, आबिद बिलरामी कह रहा, आबिद बिलरामी नहीं कह रहा, ये मेरा मजलूम इमाम कह रहा, जिसको तुम लब्बैक या हुसैन कहते हो ना, वो इमाम कह रहा, कहते मौलाना कॉस्मोपोलिटन सिटी है, अगर हम पार्टीज में, मिक्स पार्टीज में नहीं जाए तो फिर हो जिंदगी कैसे गुजारेंगे, जरूर गुजारे, नोबडी इज स्टॉपिंग यू, Nobody is stopping you. You have to answer your imam. वो मॉन्ट्रियल की उस लड़की का जुमला हमेशा याद रखना। उस लड़की ने 21-22 years old girl ने क्या कहा था कि मौलाना इनसे पूछो कि जवाब कौन देगा, मुझे जवाब देना है, not my mother. ये हर चीज के लिए लागू होता है, ये हर चीज के लिए इंप्लीमेंट होता है। अगर कोई गैमलिंग कर रहा बड़ी आसानी से, इसलिए कि मैं अफसोस से कह रहा हूं, वेरी सैड टू से दिस, कि इजी मनी, बाबा इजी मनी इस्लाम में नहीं है, इजी मनी चाहते हो तो मांगो इमाम हुसैन से, वो देंगे आपको, रॉन्ग तरीके से क्यों ले रहे हो,
غلط طریقے سے کیوں لے رہے ہو؟ گیملنگ حرام ہے، حرام ہے، ہر فرقے میں اسلام کے گیملنگ حرام ہے. اسلام کا، اللہ کے رسول کا جملہ ہے، امام حسین نے رسول اللہ نے کہا، نانا نے کہا کہ گیملنگ حرام ہے. کسی مسلمان کے فرقے میں گیملنگ نہیں ہے، تو ہمارے فرقے میں تو ہونا بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ آپ علی والے ہیں، آپ حسین والے ہیں، آپ عزاداری کرتے ہیں، آپ مجلس ختم کرتے ہیں. اگر گیملنگ کے پیچھے پڑ جائے ایزی منی، آپ کیا سمجھے کہ مولا آپ کو دے نہیں سکتے؟ اف یو ڈونٹ ٹرسٹ یور امام تو دین واٹ؟ ٹرسٹ یور امام. یہ وہ آپ اس کے در سے مانگ رہے ہیں دوستو، آپ اس علی کے ماننے والے ہیں جو ایک روٹی کے بدلے اونٹوں کی خطار دیا. واقعہ مشہور ہے، میں نہیں پڑھ رہا، میں آپ سے پوچھتا. مولا نے دیا، حسین نے زندگی کو نہیں بدلا. ایک ہزار واقعات میں پڑھ سکتا، ایک ہزار واقعات تاریخ میں ہیں، آج کے دور کے ہیں، کہ کیسے لوگوں کی ڈیسٹینی بدلی، کیسے لوگوں کی تقدیر بدلی، کیسے لوگوں کی زندگی بدل گئی. چھوٹے سے گھر میں تھے، بڑے بنگلے میں آ گئے. ایک ہزار واقعات ہیں. وائی ڈونٹ یو ٹرسٹ یور امام؟ وائی ڈونٹ یو آسک یور امام؟ اس کے لیے رسک میں ایزی منی چاہتے ہو نا؟ تمہارا رسک کو کھولنا چاہتے ہو نا؟ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رسک بڑھ جائے؟ میں ممبر رسول سے کہہ رہا، رضوی کالج میں کہہ رہا، ساتویں محرم کی رات کو کہہ رہا، میری بات پہ یقین کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا، اگر کوئی شخص میں ایزی منی کی بات کر رہا ہوں، آپ کو اتنی ایزی طریقے سے منی ملے گی، اتنی ایزی طریقے سے منی ملے گی کہ آپ امیجن نہیں کریں گے کہ ایسا بھی رسک کھلتا ہے. لیکن آپ کو میری بات، میں نے جو باتیں کی اس پہ عمل کرنا ہوگا. اور سب سے بڑی چیز طریقہ بتاتا، آج کی رات سے صلاۃ اللیل شروع کر دو. یہ میں نہیں کہہ رہا، صلاۃ اللیل یو نو شب نماز، پوری گیارہ رکعت نہیں پڑھتے، تین رکعت پڑھو. یہ گیملنگ کو چھوڑو، ایزی منی کے چکر میں ہونا. رسک کماؤ حلال، بزنس میں بھی غلط بول کے بزنس رسک ایزی منی مت لو. کسی ماں کا، کسی بھائی کا، کسی بہن کے حق کو مت لو. اگر بھائی بہن کے حق کو لو گے، ان کے پیسے کو لے گے، ان کے مال کو لو گے، تو منی جو آنے والی ہے تمہارے پاس، جو رسک آنے والا ہے، وہ رک جائے گا. ایسا رکے گا دیواریں کھڑی ہو جائیں گی. اور ایک چیز یاد رکھو، اگر اللہ دینا نہیں چاہے تو کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا. آپ کا ٹرسٹ اتنا ہونا چاہیے. شب نماز اگر کوئی پڑھتا، شب نماز، وہ رسک کے پیچھے نہیں چلتا. اگر کوئی شب نماز پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں رسک کے پرابلم میں ہوں، پیسوں کے پرابلم میں ہوں، میں پریشان ہوں، میرا روٹی بند ہو گئی، میرے بزنس بند ہو گیا، یہ امپاسبل ہے. معصوم کہتا کہ وہ غلط بولتا ہے. جو شب نماز پڑھے گا اور رسک کا پرابلم ہوگا، اس کو رسک کا پرابلم ہو ہی نہیں سکتا انلیس وہ رسک ہے حرام کھا رہا ہو، انلیس اس کے گھر والے مکس گیدرنگس میں جا رہے ہو، انلیس وہ راضی ہے اپنی وائف اور اپنی بیٹی کو بے حجاب پھرانے کے لیے، انلیس وہ گیملنگ کرتا، وہ لوگوں سے فراڈ کرتا ہے، تو شب نماز کا اثر نہیں ہوگا. ادروائز آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا پروٹیکٹ کرو. اگر کسی کو ہرٹ کرو گے تو بھی شب نماز کا اثر نہیں ہوگا. یہ تو سمپل چیزیں، اس سے تو ہم بچ سکتے، بیک بائٹنگ سے، ان سب چیزوں سے بچ سکتے. آپ میری ریکویسٹ ہے، آج سات محرم کی رات ہے، پانچ دن پڑھو خالی، بارہ محرم تک، اس کے بعد دیکھنا. میں تو ہوں نا بارہ کے بعد، آپ دیکھنا اس کے بعد. میں پانچ دن کا ٹائم لے رہا آپ سے، جسٹ فائیو ڈیز، اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہوں پانچ دن کے. یو اسٹارٹ ناؤ فروم ٹو نائٹ اینڈ یو سی دا چینج، یو سی کہ کیسا ادھر سے راستے کھولتے. مسبب الاسباب پڑھنا، یا مسبب الاسباب. آپ ایک سلوا پڑھ لیں، محمد والے محمد، یا مسبب الاسباب، سب پڑھو. किसी का बिजनेस अच्छा है वो भी पढ़े, किसी की जॉब अच्छी है वो भी पढ़े, 330 टाइम्स पढ़ो, 330 मरतबा या मुसब्बुल अस्बाब। इसका मतलब है ये अल्लाह का नाम है, ये अल्लाह का नाम है, अल्लाह के जो 1000 नाम है उसमें एक नाम ये है। इसका मतलब है कि अल्लाह तुम मेरे लिए वेव्स को पैदा कर, रास्तों को निकाल। आपको मालूम ये पढ़ने से दीवार में से रिस्क मिलता है, दीवार अगर आप समझ लें कि इम्पॉसिबल है दीवार में से रिस्क मिलना, अल्लाह चाहे तो दीवार में से रिस्क दे सकते, आपके जितने ऑब्स्टिकल्स है ना सब दूर हो जाते, जितनी रुकावटें वो दूर हो जाती अगर या मुसब्बुल अस्बाब पढ़े। लेकिन फिर वही बात, रात भर इबादत करो और सुबह उठ के बैक बाइटिंग करो, सुबह उठ के रिस्क हराम जबान पे डालो, सुबह उठ के बोले बेटी जा कोई बात नहीं, तू कॉस्मोपोलिटन सिटी में रहती है जा, नो प्रॉब्लम, कुछ फायदा नहीं है। शब नमाज, यहां तक के आगा खुमैनी रहबर इनकलाब के बेटे से पूछा गया था अहमद खुमैनी से कि आपके बाबा में ये ट्रस्ट कैसा पैदा हुआ, ये यकीन कैसा पैदा आया, उनका यकीन उनका बिलीफ इतना स्ट्रांग कैसा है कि वो इतने यकीन के साथ कोई चीज करते हैं। तो कहा कि मेरा बाप 40 साल से शब नमाज मिस नहीं करा। यू अंडरस्टैंड ना, शब नमाज ये गिफ्ट है इमाम हुसैन का, लब्बैक या हुसैन कहने वालों के लिए ये गिफ्ट है मेरे मजलूम इमाम का। आखिरी वसीयत मेरे मजलूम इमाम की बीबी जैनब से ये थी कि बहन मुझे शब नमाज में भूलना नहीं, मेरी ख्वाहिश है पूरा बॉम्बे मुझे सुन रहा है इस वक्त, जो भी मेरी मजलिस सुन रहे, जहां भी मेरी मजलिस सुन रहे, कि इमाम हुसैन को गिफ्ट देना जो शब नमाज के जरिए गिफ्ट दो। इमाम की मोस्ट फेवरेट इबादतों में एक इबादत यह थी कि वो आखिरी वसीयत विल है मौला की कि प्लीज डोंट फॉरगिव मी, प्लीज। इमाम कहता है मेरी बहन मुझे भूलना नहीं, मुझे याद कर। ये इमाम वक्त कह रहा है, इजी मनी, ये छोड़ो बाबा छोड़ो, अब ये रिजवी के मजलिसों से हमें चेंज आ जाए इंशाल्लाह। I'm really happy. मैं तो कह रहा था एक का चेंज है 10 दिन में, लेकिन काफी बड़ी तादाद में यूथ में, बॉम्बे का ये यूथ जो मुझे सुन रहा, खाली आपने जो बाहर भी लोग सुन रहे, एक चेंज है, चेंज है कि हमने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, एंड रियली हम अपनी सर्विसेज को मजलूम को ऑफर करते हैं, और हमारी प्रेयर्स ये है हमारी के मौला हमारी इस सर्विसेज को एक्सेप्ट करें। तो आपने सुना कि पहली आवाज लब्बैक या हुसैन की सुलेमान खजाई ने लगाई थी। मैं सिर्फ यह बात इसलिए बता रहा कि हमारा यूथ में एक मोटिवेशन पैदा हो, एक जज्बा पैदा हो, वो लोग तैयार हो कि किस माहौल में, दोस्तों आज कितना इजी माहौल है। सिर्फ मैं आपसे कह रहा आज के माहौल में सिर्फ आपको छोड़ना है, आज का माहौल वो माहौल नहीं है। आप बोलेंगे आज मैं क्या करूं, हुसैन को लब्बैक या हुसैन कहूं तो मैं क्या करूं, मैं तो कह रहा, लेकिन आज के माहौल में कुछ करना नहीं है, बाहर निकल के कुछ मत करें, अपने आप में चेंज लाए, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। चेंज योर सेल्फ, किसी के पीछे मत पड़ो, रास्ते पे कुछ मत बोलो, पीसफुल तरीके से अपने घर में, अपने घर के जो सराउंडिंग्स है, आपके फ्लैट के, आपके बंगले के, आपके घर के जो सराउंडिंग्स है, उस सराउंडिंग्स को चेक कर लो, उस सराउंडिंग्स को सही कर लो, उसके बाद देखो तुम जब लब्बैक कहोगे तो फातिमा का लाल वहां से जवाब देगा। सुलेमान खदाई वो भी हमसे सशिया, आप सोचो कि उसने इनका क्रश कर दिया था, इन लोगों जो लोग 5,500 एस जैसी कैद में 5-4 साल रहने के बाद उनका मॉरल का क्या हाल होगा, खत्म हो गया होगा ना, लिटरली खत्म हो गया। आपको पता है उनके लिए क्या था, दिन भर में एक रोटी गर्म पानी आता था बस। अब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा, इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ रहा करबला के बाद, आप सोच एक रोटी या दो रोटी और वो भी लकड़ी के जहर तहत एक स्टिक के साथ ऊपर से नीचे छोड़ते थे, अब नाम पुकारते थे, उसके अंदर भी लोग जो थे जो प्रिजनर्स थे उनको जंजीरों में जकड़ भी दिया था। और आपको एक हैरत की बात है, जुल्म कितना बढ़ गया था आप अंदाजा है। अगर अंदर कोई बीमार होता, कोई मर जाता, आपको पता है उसकी डेड बॉडी को दफन नहीं करते थे वो लोग। क्यों नहीं दफन करते थे? कि वहीं पे वो उसकी बॉडी खराब हो जाए, जर्म्स निकले, दूसरे लोग इससे इफेक्ट हो, दूसरे लोग भी मरे। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन, ये हालात थे करबला के बाद। 4-4.5 साल ऐसे माहौल में कोई रहकर बाहर आकर क्या कोई रिवोल्यूशन बर्पा करेगा, क्या कोई इनकलाब करेगा? इमेजिन करो आप। ईमान से पूछता मैं आपसे, इतने हजारों लोग मुझे सुन रहे ना, मैं आपसे पूछता क्या इतना मॉरल क्रश कर दिया, हाथ और पैर में ताकत नहीं रही, भूख के मारे। आपको पता है कि उन लोगों का आलम यह था, आपको अजीब लग रहा होगा, उन लोगों के बाल यहां तक हो गए थे, उनके नाखून नेल्स बढ़ गए थे, कोई काटने वाला नहीं। ऐसे माहौल में रखा था इनको, ऐसे माहौल से अगर निकल के कोई रिवोल्यूशन को बर्पा करे, कोई इनकलाब को लेकर आए, तो उसको कितना बड़ा रिकॉर्ड मिलना चाहिए मासूम की तरफ से। आपको पता है कि उसके बाद सुलेमान खजाई करबला के बाद पहली जो आवाज लब्बै क्या हुसैन की निकली, 4 साल के बाद जब जेल से बाहर आई है प्रिजनर्स, उसमें सुलेमान है, 70 या 80 years old man, इतने साल जेल में रहकर बाहर आता है, बाहर आके लोगों को जमा करता है, चीखे मार के रोता है कि हुसैन शहीद हो गए, करबला में इतना बड़ा जुल्म हो गया। रोते हैं, रोते हैं, रोते हैं, लोगों को जमा किया, गौर से सुनो, लोगों को जमा किया, जमा करके कहा कि मेरा साथ कौन देगा। इधर मरवान जो है हाकिम बन गया था, यजीद खत्म हो गया था, मरवान हाकिम बन गया था, इब्ने ज़ियाद सीरिया चला गया था। ऐसे माहौल में सुलेमान खजाई ने 15 या 16 हजार आदमी को जमा किया, जमा करके कहा कि अब यह हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हमने हुसैन को बुलाया था, हमने लब्बैक कहा था, अपने हर लेटर्स में हमने लिखा था कि लब्बैक या हुसैन, मौला आप आइए, हम अपनी सर्विसेज को ऑफर करेंगे, और हम अपनी सर्विसेज को ऑफर नहीं कर सके। हुसैन करबला चले गए, हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया, हमको जेल में भेज दिया गया, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम खातिलान हुसैन से बदला लें। तो फिर हुआ क्या, इन्होंने तैयार किया, तैयार करके इन्होंने कहा सबसे पहले मुझे जाकर हमको इमाम की जियारत को जाना है। तो जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी जो पहला जायर था, उसके बाद जो एक बड़ा ग्रुप आया हुसैन की ज्यारत के लिए, खबर हुसैन की ज्यारत के लिए, वो ये सुलेमान खजाई का ग्रुप था। 5-5.5 हजार आदमी करबला पहुंचे। उस वक्त इमाम हुसैन की सिर्फ खबर मुबारक थी, शोदाए करबला की खबर थी, और मौला अब्बास जनाब हबीब छोटी छोटी खबरें बनी हुई। आपको पता है इन लोगों ने क्या किया, 3 दिन तक इतना मातम किया, इतना गिरिया किया कि रिवायतों में है कि इनके रोने की आवाज कूफे वाले सुन रहे थे। इतना रोए कि मौला हमने आपको बुलाया और हम कुछ नहीं कर सके। दोस्तों कितनी आसानी से हमने बुलाते मौला को, हम नहीं कहते, हम भी तो कहते कि मौला आइए, अजरुल्लाह ताला फरजो नहीं कहते, दुआए फरज में असाथ 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 नहीं कहते। यू नो व्हाट इज, व्हाट डज इट मीन, अस्सा के माने क्या है? दुआए फरज जो आप पढ़ते, अस्सा के माने राइट नाउ, अभी इसी वक्त। आप कहते हैं अस्सा अस्सा अस्सा, अलाजल अलाजल अलाजल, मौला राइट नाउ आप आइए, राइट नाउ। आर यू रेडी? हम थोड़ा सेक्रीफाइस, देखिए इमाम कुछ नहीं चाहते, इमाम हुसैन आज सिर्फ अपने सराउंडिंग्स को सही कर लो। हर बॉम्बे के घर की सराउंडिंग सही हो गई तो फिर वो घर वैसा बनेगा जैसा हुसैन चाहता है। मैं गलत कह रहा? ट्राई करो, ट्राई करो, कुछ तो ट्राई करो। मुहर्रम का मकसद क्या है? मकसद है मुहर्रम क्या है? मजलिसों का मकसद क्या है? इफ यू डोंट चेंज, जो चीजों को मैं बार बार कह रहा, इन चीजों को छोड़ दो, कुछ मत करो, किसी को मत बोलो। जो चीजें अब तक मैंने बोली उन चीजों को इसी फर्श अदा पे बैठकर, कहीं जाके बोलने की जरूरत नहीं है, कहीं मत जाओ। तुम फर्श अदा पे एक घंटे से बैठे हो ना, तो एक घंटे में फर्श अदा पे कुछ मत करो, जोर से भी मत बोलो, अपने बाजू वाले को भी मत बोलो, तुम अपनी वाइफ को भी मत बोलो, अपने बच्चों को भी मत बोलो। पहले हर आदमी खुद कैसे ट्राई करे, आज इस फर्श अदा पे बैठ के दिल से कहो मादर हुसैन से, दिल से कहो अपने इमाम हुसैन से कि मौला मैं आपको लब्बैक कह रहा, एंड आई प्रॉमिस यू मौला कि ये जो बातें जो मेरी लाइफ में है, अगर किसी के पास है, कोई ऐसा करता है, कोई गैम्बलिंग करता है, कोई म्यूजिक सुनता है, कोई ड्रिंक करता है, कोई बैक बाइटिंग करता है, कोई बेपर्दा फिरता है, कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई इस तरह की हरकतें करता, कोई गुनाह करता, तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने सब एक मिनट में पूरी लिस्ट सुना दी, आप किसी को बोलने की जरूरत नहीं। आप यहां बैठ के आप कहो मौला मैं आपसे वादा कर रहा, मौला हुसैन आज मुहर्रम की 6 तारीख है, मैं आपसे वादा कर रहा कि मैं लब्बैक कह रहा मौला, एंड आई जस्ट वांट टू ऑफर माय सर्विसेज, मौला आपसे वादा कर रहा कि ये चीजों को मैं आज के बाद नहीं करूंगा। आप जबान से तो बोलो, आप दिल से तो बोलो, एक दफा तो बोलो। आप उस हुसैन को बोल रहे जिसने एक जुमला हुरकी, उसने पूरी जिंदगी हुरकी बदल दी। ही विल चेंज योर लाइफ, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी ख्वाहिश है दोस्तों, प्लीज, मैं जो बोल रहा ना, कम से कम इन बच्चों पे रहम करो जिन तुम्हारी गोदों में जो बच्चे हैं, जो गोदों में तुम्हारी माओ से कह रहा कि जिनकी आगोश में बच्चे हैं, उन माओ से कह रहा जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं कि उन बच्चों पे रहम करो, उन बच्चों पे रहम करो। हुक्म क्या है कि बच्चों के खातिर, आपको मालूम अमेरिका और यूरोप में जो दुनिया, जो इंडिया पाकिस्तान में जो लोग थे ना, जो बिल्कुल बेदीन थे, जो बिल्कुल 10-12 दिन के आजादार थे, जो नमाज कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते, आपको मालूम है अमेरिका कनाडा में वो पूरे ऐसे लोग जो बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान में दीन पे थे ही नहीं, रिलीजन पे थे ही नहीं, दुनिया में डूबे हुए थे, वहां सब जाके रिलीजियस हो गए। मुझे बास वक्त हैरत हुई वहां जाके, उन्होंने जो अपने अपने किस्से सुना, हम ऐसे थे। मैंने कहा यार फिर चेंज कैसा हुए, तो कहा इन बच्चों के लिए हुए। अगर हम खराब रहेंगे तो हमारे बच्चों का क्या हाल होगा, तो आप यकीन करें ऐसे ऐसे हो गए, इतने डिसेंट हो गए कि कोई बुरा काम करते नहीं। मुझे मालूम बॉम्बे वाले तो करते नहीं, मैं तो एक मैसेज दे रहा, मुझे यकीन है कि बॉम्बे में कोई ऐसा काम नहीं होता, बॉम्बे के तो सब मोमिनीन है, परफेक्ट लब्बैक या हुसैन बोलने वाले, और हर घर पे यहाँ लिखा हुआ भी है ना लब्बैक या हुसैन। तो आपके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, एक जनरल मैसेज दे रहा, जो करता है उसके लिए कह रहा। तो आप देखें कि बच्चों के खाते आराम से चेंज हो गए, आप उनके घर में ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी रहमत। आप यकीन करें, एक घर वाले थे, एक फैमिली थी अपने इंडिया की, मैं जगह का नाम नहीं बोलता, हो सकता जानने वाले यहां पे हो या कोई मुझे मजलिस सुन रहा तो उनके जानने वाले होंगे। ऐसी फैमिली, वेरी मतलब वेल एजुकेटेड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि शिया को जाहिल रहना ही नहीं चाहिए, शिया कभी जाहिल नहीं होना चाहिए, अली वाला इमाम हुसैन को लब्बैक कहने वाला कभी जाहिल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जहालत में तो ना अली समझ में आता ना हुसैन समझ में आता। इल्म होगा तो इमाम हुसैन अच्छे समझ में भी आएंगे, मजलिसें भी समझ में आएंगी, अगर जहालत में रोके तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बॉम्बे में, जब मैं ये मदरसें कभी मदरसें दूसरे इंडिया के स्टेट्स में पढ़ता हूं जहां एजुकेशन की जरूरत होती है, तो वहां तो मैं बहुत जोर देता हूं एजुकेशन के लिए, इसलिए कि एजुकेशन के लिए माशाल्लाह इतना बड़ा आपके पास ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी कम्युनिटी को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े। जब मैं बॉम्बे के वो एरियाज में, नाम नहीं बोलूंगा, उन एरियाज में जब जाके पढ़ता हूं तो मैं फोर्स करता हूं वहां पे कि जाओ बाबा एजुकेशन को हासिल करो, इसलिए कि एक दफा एजुकेशन होगा ना, एक दफा इल्म आ जाएगा ना, तो बहुत फायदा होगा। लेकिन रिजवी के मदरसे में मुझे एजुकेशन के लिए बोलने की जरूरत नहीं, यहां माशाल्लाह पूरे स्टूडेंट से बेहतरीन पढ़ने वाले, तो वहां पे ये आलम बेहतरीन फैमिली, वेल एजुकेटेड फैमिली, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रही, एकदम चेंज आ गया शादी के बाद, जो बच्चों में चेंज आया, इसलिए कि उन लोगों ने कहा कि अगर उनकी फैमिली में एक इंटरकास्ट मैरिज हो गई, एक बेटी कहीं और, एक बेटा अमेरिकन को घर में डाल दिया, तो जब देखा उन्होंने सराउंडिंग्स में कि ये हशर हो रहा, तो कहा अपने बच्चों को देख लो भाई, वरना हमारे नस्ल का क्या होगा, हमारी औलाद का क्या होगा, इतने प्रॉब्लम्स। तो एक दफा हुआ तो फौरन उन्होंने ब्रेक्स लगा लिया अपने आप को, इतने माशाल्लाह मजहबी होकर बड़े परेशान थे, बिजनेस वाइज बिल्कुल उनका खत्म हो गया, रियल स्टेट का बिजनेस था। और जब रियल स्टेट का बिजनेस उनका तबाह हुआ, ऐसा तबाह हुआ कि डेब्ट्स में आ गए, और वहां पे डेब्ट्स में आना बड़ा प्रॉब्लम है, रिसेशन का जब जमाना है। तो वो कहते हैं कि मौलाना जब हमने चेंज किया अपने आप को और प्रॉमिस किया मौला को कि हम यही करेंगे, हम वो करेंगे जो आप चाहते, हमने ये चीजें छोड़ दी। दोस्तों एक बात बोलूं, बॉम्बे में तो फिर भी आसान है, जो मैं बातें कह रहा हूं उसमें बचने का, जितनी मैंने बातें की बॉम्बे में जिंदगी गुजारने में बहुत आसान है, आप आराम से छोड़ सकते। यूरोप अमेरिका में मुश्किल है, वहां का माहौल ऐसा है कि वहां के माहौल में इतनी आसानी से आप अपने रिलीजन पे आप अमल नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, आप यकीन करें मुश्किल है। स्कूल में बच्ची अगर स्कार्फ पहन के जाती वहां पे तो प्रॉब्लम होता है, वहां पे आपको पता है कि फ्रांस में क्या प्रॉब्लम हुआ, दुनिया में दूसरी जगह में क्या प्रॉब्लम हुआ, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आपको पता है इन लोगों ने अपने बच्चों को वहां पे जो मुस्लिम अमेरिकन स्कूल है, जैसे ह्यूस्टन में एक हादी स्कूल है, न्यूयॉर्क में अल हुई सेंटर का स्कूल है, तो इस तरह के स्कूल्स में भेजकर अपने बच्चों को ये सैक्रिफाइस किया कि अगर हमारे बच्चे वो स्कूल्स में जाएंगे जो स्कूल्स फ्री हैं, और हादी स्कूल और न्यूयॉर्क के और दूसरे जो डिट्रॉयट में स्कूल्स हैं वो आपको पे करना पड़ता, प्राइवेट स्कूल्स हैं और वहां की फीस बहुत है, लेकिन उसके बावजूद दोनों काम करके स्ट्रगल करके अपने बच्चों के खातिर, जनरेशन के प्रोटेक्शन के लिए, जनरेशन को बचाने के लिए प्राइवेट स्कूल्स में $400 फीस देकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे। क्यों पढ़ा रहे? इसलिए कि ऐसे स्कूल में रहेंगे। इंडिया में तो कोई इश्यू ही नहीं है, बॉम्बे में तो कोई इश्यू ही नहीं है। आपको जो चीजों को मैंने कहा, जिस चीज को इमाम हुसैन पसंद नहीं करते, जिस चीज के बाद लब्बैक की आवाज हुसैन इब्न अली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आपने ये छोड़ दिया, और बॉम्बे में क्या इश्यू है, आराम के साथ अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते, अपने रिलीजन को कर सकते, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाता। ऐसे माहौल में अगर कोई अमल नहीं करे और वैसे माहौल में कोई अमल करे, तो अब आप खुद बताइए कि हुसैन किसको सीने से लगाएगा, आपको सीने से लगाएगा, उसको लगाएगा। ये अंडरस्टैंड करें आप, मैं क्या कह रहा हूं, मैं रियलिटी को पेश कर रहा हूं, जो हकीकत है वो बता रहा हूं कि अनलेस वी चेंज, मजलिसों का मकसद ही ये है, बार बार ये जुमला कह रहा कि एक ऐसा इंकलाब आए, और यूथ में जब इंकलाब आता ना वो इंकलाब कामयाब होता। हर रिवोल्यूशन रशियन ले ले, ईरानी ले ले, बांग्लादेश का ले ले, जितने आए यूथ से आए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने किया, गर्ल्स एंड बॉयज ने किया। इस्लामिक रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ एक औरत से, औरत से, मर्द से नहीं। मेरी आवाज मेरी मां बहनें सुन रही, उनको मैं एनकरेज कर रहा कि वो अपनी सराउंडिंग्स को सही करें। पहला इंकलाबी, इस्लाम का जो पहला इंकलाब की आवाज सुनाई थी रसूल के जमाने में, जब आवाज बुलंद हुई मक्के में, खुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, कहो अल्लाह एक है, जब रसूल ने पहला स्लोगन बुलंद किया, उस वक्त मेरे मौला ने आगे बढ़ के कहा लब्बैक या रसूलल्लाह। उसके बाद जब दुश्मनी फैली मक्के में, आप मैसेज डॉक्यूमेंट्री फिल्म में देखते हैं कि जमीन पे डाल कर खींचा गया, सीने पे पत्थर मार के, तासियाने मारे गए, हंटर मारा गया, हैंग कर दिया गया, प्यासे मारे गए। अब जाके देखे कैसा जुल्म हुआ मक्के में, ऐसे मौके पर पहला इंकलाब एक औरत ने बर्पा किया जिसका नाम सुमैया था, जो अम्मार यासिर की मां थी। उस औरत की शहादत हुई, इस्लाम को पहला जो खून पेश किया, पहला जो ब्लड मिला वो औरत से। औरत का मकाम, औरत का स्टेटस इस्लाम में बहुत बड़ा है। शुक्र करो कि तुम 2012 में हो, 2012 में हो, 2012 में वो सैक्रिफाइस नहीं चाहिए, 2012 का जो सैक्रिफाइस है अपने सराउंडिंग्स को सही कर लो, बस अपने घर को सही कर लो, ये सबसे बड़ा इंकलाब है। कुछ नहीं चाहिए इमाम हुसैन को, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारे घर सही हो जाए, तुम्हारी औलाद सही हो जाए, तुम सही हो जाए। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, उनको देखने की जरूरत नहीं, कुछ मत करो, डोंट डू एनीथिंग। हर बंदा अपने फ्लैट में जाके चेक करे कि मेरे जो फ्लैट में 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम 5 बेडरूम के मेरे जो फ्लैट्स है उसमें क्या हो रहा। हर इंसान अगर वो सराउंडिंग्स को सही कर लेना जो बातें बार बार रिपीट कर रहा, इसलिए रिपीट कर रहा कि अल्लाह ने भी कुरान में रिपीट किया कि हम लोग ऐसी बातें जल्दी नहीं सुनते ना, हम अपने कॉन्शियस को हिला रहे, अपने जहन को हिलाना है। 5-4 दिन और रह गए मुहर्रम के, 9 तक होगा, 9 तक इस मजमे को मैं चाहता कि मेरे यूथ जो मुझे सुन रहा ना उनको ये चाहता कि ऐसा इनकलाब के लब्बाए या हुसैन जब तुम 9 मुहर्रम को कहो तो फातिमा का लाल जवाब दे दो। आप नहीं चाहते